निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे।
ओम शांति। आज आपका ये पहला सत्र है, ऐसे है ना? पहले सत्र के पहले हम सब ने बाप दादा के महावाक्य आज की मुरली सुनते समय ये याद रहा कि हम मौन भट्टी में है, रहा याद? मौन भट्टी की विशेषता हर एक अलग अलग भावों से इस बात को अपने अंदर सोचते होंगे। मौन भट्टी अर्थात अंतर्मुखता में रहना, अंतर्मुखी बन जाना, अंदर के मुख को देखते रहना। अंदर का मुख कौन सा है? बाहर का मुख तो शरीर के ऑर्गन्स पांच तत्वों के बने हुए हैं, लेकिन अंदर का जो मुख है वो पांच तत्वों से बने हुए नहीं, परंतु पांच तत्वों से परे, रहने वाले भी परे और तत्वों से परे धाम के रहने वाले, और इस प्रकृति में, प्रकृति के नाटक में आकर के अपना पार्ट बजाते हुए ऐसे ही अपने को महसूस करे कि मैं पार्ट बजाने वाली पार्ट से परे हूं, हूं भी परे और बजाने वाली भी मैं ही हूं, पार्ट मेरा ही है पर मैं बजाने वाली इससे अलग हूं और अपना पार्ट इस समय के लिए बजा रही हूं। अगर हमें ये स्मृति हर समय बनी रहती है, क्योंकि हमें याद है शुरू शुरू में जब हम शुरू में आए हैं, जब ज्ञान का विस्तार नहीं है और केवल ये एक ही बात हमें बताई जाती थी, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर से न्यारी हूं, शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, मैं इससे न्यारी भी हूं और इसकी मालिक भी हूं, इसको चलाने वाली हूं। अब ये सुनने के बाद यह अभ्यास जब हमने चालू कर दिया तो वो अंदर में ऐसी धुन लगी रही जो चलते फिरते उठते बैठते बस वो ही अंदर की धुन चालू रहती थी अंदर में, मैं इससे न्यारी, इससे कराने वाली, इसकी मालिक। तो मालिक हमेशा अलग होता है और जिससे कराता है वो अलग होता है। वैसे स्थूल में भी ऐसे है ना, काम कराएगा जिससे वो अलग, कराने वाला अलग। पर ये हम इकट्ठे होते भी ऐसे ही अपने को समझें कि ये करने वाली इंद्रियां हैं, इससे कराने वाली मैं, इससे न्यारी हूं। और आप सोचो शुरू शुरू में जब ये नशा चढ़ जाता है तो उस समय अंदर में कैसी स्थिति रहती होंगी। मैं समझती हूं, खैर आप लोग तो उसी समय पे नहीं आए, परंतु जब भी आए और जब आप लोगों को ये पहला लेसन मैं आत्मा हूं और वो लेसन शुरू में हम जिसको भी कराते थे उसको यही बोलते थे कि ये लेसन पक्का करके आना, कल हम पूछेंगे, और अगर उसमें अभ्यास ठीक न रहा तो फिर दूसरे दिन के लिए देते थे। उस समय इस लेसन को बहुत पक्का कराते थे जिज्ञासु को भी, स्वयं को तो पक्का रहता ही था लेकिन कराते थे तो भी उनको ऐसा पक्का कराते थे। अभी आप लोगों के लिए तो मैं नहीं कह सकती क्यों कोई कब आया है कोई कब आया है, जो दो साल के अंदर आए हुए हैं वे आते था ना ज्ञान में, जिनको दो साल हुआ है। अच्छा सब दो साल से पहले वाले हैं, पांच साल वाले आते था ना, उसमें दो तीन चार, अच्छा तीन साल वाले उठाओ, एक चार साल दो चार पांच साल वाले तो रे जास्ती, छह साल, अच्छा दो साल से कम एक साल वाले, एक दो इधर है, छह मास वाले भी हैं, ये हाथ जल्दी उठाया और जल्दी नीचे किया, भूल से उठा लिया ऐसे, या ऐसे ही बैठ गए हो, बोलो जिन्होंने छह मास में हाथ उठाया, ये सामने नजर आ रहे हो तीन भाई आपस में बोलते हो, है छह मास वाले कोई, क्या बोल रहे हैं, एक साल में है, छह मास ना, छह मास तो ये क्यों उठा, अच्छा नहीं कहने का भाव ये पूछने का यही है, माना आप इतना पहले नहीं आए हो अभी अभी, तो मतलब पांच साल से ऊपर वाले जस्ती हैं, और कई तो हम भी देखती है पुराने पुराने हैं। ये सब कहने का भाव यही था कि शुरू में जब आए तो ये लेसन बहुत पक्का करते थे, अर्थात चलते फिरते अंदर में जैसे ये धुन लगी रहती थी, किसको भी देखेंगे तो पहली स्मृति यही रहेंगी और दृष्टि हमेशा ऐसे ही जाएंगी उसके मस्तक पे, ऐसे ही नजर जाएंगी कि ये आत्मा, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, हम आत्माएं एक बाप की संतान, और ये जैसे अंदर से देख के और वो खुशी होती थी। तो कहने का भाव कि शुरू शुरू में ये अभ्यास पक्का होने के कारण जो भी हम इसके बाद ज्ञान धीरे 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 सुनते गए, क्योंकि हमारे दिनों में तो ऐसा हुआ ना, सारा ज्ञान एक साथ नहीं, ड्रामा की नॉलेज कितनी पीछे, बहुत समय के बाद, पहले तो आत्मा का अभ्यास, फिर उसकी पूरी धारणा, और धारणा के साथ फिर उनके गुण उन्हीं रीति से अपन को चलाना, और कहेंगे ये तो बाबा की कमाल जो हम लोग छोटेपन में ही आए, जबकि हमारे बुद्धि में और कोई दुनिया की बातें नहीं, एटमॉस्फेयर भी अच्छा, समय भी अच्छा था, परंतु अब फिर जितनी नॉलेज स्पष्ट है, जितना ज्ञान का स्पष्टीकरण है, दुनिया के अंदर जितना विस्तार है, उतना ही बाबा ने ज्ञान का विस्तार हमें अच्छी रीत से समझाया है। क्यों कभी बुद्धि में इतनी ग्रहण करने की शक्ति है, और जो बुद्धि में बातें इतनी भरी हुई है, तो उसके कंपैरिजन में यह बाबा की नॉलेज भी इतनी विस्तार से बाबा ने हमें हर बात समझाई है, जो सचमुच अगर हम उन बातों को मनन करें, तो हमारे अंदर और कोई भी इधर उधर का चिंतन चल ही नहीं सकता। काम करने समय भले जो जो जिसका काम है करते रहेंगे, क्योंकि वो भी अगर अभ्यास है कि मैं इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कराने वाली हूँ और उसी भाव से मैं कर्म कराती रहती हूँ, तो उन्हीं भावनाओं में हम कर्म भी करते रहेंगे और मन के अंदर वो हमारी स्थायी रूप बना ही रहेगा। तो ये हमें ऐसी मदद थी, जैसे बाबा जो जो बात समझाते जाए और उसको जैसे जिस समय नंबर वार जो बात निकलती जाए उसको हम समझते जाएं, और समझ करके अपने जीवन के कर्मों में उसका अभ्यास करते रहे, जिस कारण हमारे लिए बड़ा सहज, समझना भी सहज, अभ्यास करना भी सहज, और उसके कारण जीवन ऐसी सहज रीति से बनती गई। अभी जीवन में सर्व प्रकार से सब बातें इकट्ठी है, ज्ञान भी देखो कोई भी नया आता है तो हम आत्मा से लेकर सृष्टि चक्र तक पूरे कल्प की कल्प रिपीट होता है, रिपीटिशन तक उसको ज्ञान दे देते हैं। तो इन सब बातों को एक साथ मनन करना समझ में तो आ जाती है, मनन करना फिर अभ्यास में लाना, और अभ्यास के द्वारा फिर उसको ऐसे कर्मों में लाना, उसके लिए हर एक को समय लगता है। तो अभी के समय अनुसार बाबा हमें फिर से यही बात पक्की करा रहे हैं जो हमारा फाउंडेशन है। और आप लोगों को याद होगा, दो चार दिन पहले ही साकार बाबा की मुरली में ये आया था कि फाउंडेशन को आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए, अर्थात अपना ये फाउंडेशन पक्का करने के लिए किस बात की आवश्यकता है, याद है क्या जवाब आया, जिसमें बाबा ने जवाब पवित्रता बताया था। तो पवित्रता अर्थात हमारे मन के अंदर और कोई प्रकार का संकल्प नहीं, ये जो मेरी दृष्टि वृत्ति है वो उसमें ही लगी रहे, मुझे जो करना है वो ही बात हमारे बुद्धि में रहे उसके स्वयं, और कुछ और कहां भी मेरा ध्यान न जाए, अर्थात एकाग्र बुद्धि। जब बुद्धि एकाग्र है तो वो बुद्धि दिव्यतारी विचार करती है। तो आज के जो विषय है, विजयी बनने का साधन बिंदु लगाना, बिंदु अर्थात फुल स्टॉप, बात को फुल स्टॉप लगाना कहा जाता है। परंतु हम इसको अगर ये कहें कि पहले हम हर बात के रीति से बल्कि जब से हम सुबह को आंख खुलती है तो सवे उठते ही अगर हम अपना वही स्वरूप याद रख करके अपने कार्य को शुरू करें तो सारा दिन हमारे अंदर वो बात पक्की रहेगी और उसके आधार पर हम सारा कार्य करते रहेंगे। और वो बात यही है, वैसे के शब्दों में कहा जाए कि मैं कौन और किसकी संतान, जिसको हम कहें सेल्फ रियलाइजेशन। अभी सेल्फ को हर एक जानता है और हम ब्राह्मण भी जानते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा ही हूँ, जो मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान हूँ। मेरा बाप वही सर्वशक्तिमान, सारी विश्व का रचयिता, नई दुनिया बनाने वाला, ऐसा मेरा बाप है और उनकी मैं संतान हूँ। कौन हूँ? अगर बिंदु शब्द कहते हैं तो कोई को समझ में नहीं आएगा। आत्मा शब्द हर एक जानता है और ये आत्मा का स्पष्टीकरण वो भी अगर हम कहे तो बाद में हुआ है, बिंदु रूप तो एकदम काफी समय के बाद। मैं समझती हूँ ये बिंदु शब्द मम्मा के जाने के बाद निकला है, मुझे जहां तक याद है। जो कोई कोई जब ये बिंदु की बात निकली थी तो बड़े मूंझते थे और बाबा को कहा, बाबा ऐसे तो हम आत्मा के याद में रहते हैं, माना ये हमें पक्का है, पर जब से बिंदु निकला बिंदु को याद करो तो बिंदु को याद करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बिंदु को क्या याद करे, बिंदु तो कुछ भी ना के बराबर है ना, कुछ नहीं है। परंतु बिंदु माना अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और अति पावरफुल। जैसे आज कहे साइंस में एटॉमिक क्या है, जो अंदर एटॉमिक एनर्जी है वो क्या है, इतनी ही तो सूक्ष्म है और इतनी ही पावरफुल है। तो वास्तव में मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली, पावर का रूप लाइट ही होता है जिस कारण लाइट माइट कहा जाता है। तो मैं आत्मा मेरा रूप हो गया लाइट माइट स्वरूप। अब आप सोचो जब हम अपने अंदर हूँ शरीर में, सोचती भी तब हूँ जब शरीर में हूँ, परंतु हूँ क्या, जिसके अंदर ये पांच प्रकृति के तत्व नहीं है, तो क्या है, लाइट और माइट, प्रकाश, स्थूल प्रकाश नहीं, परंतु वो प्रकाश जिस प्रकाश से यह शरीर चलता है, जो प्रकाश हाथ में नहीं आता, इन आंखों से नहीं देखा जाता, परंतु वो एक शक्ति जो स्थूल में दिखाई नहीं पड़ती, परंतु वो शुद्ध होने के कारण और वो शक्तिशाली रूप से इस शरीर तो क्या पर कितना मैंने पाठ बजाया है। याद होगा एक मुरली में बाबा ने कहा कि देखो आत्मा के अंदर पूरे कल्प का 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इतनी छोटी सी बिंदु उसके अंदर ये पूरे कल्प का पाठ भरा हुआ है। तो आप सोचो मैं आत्मा जो कल्प के अंदर पाठ में कितनी एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटी पूरे कल्प की 84 जन्मों की मुझ आत्मा के अंदर समाई हुई है, जो मैं अपने अपने समय पर बजाती रहती हूं, तो ये मुझ आत्मा के अंदर कितनी बड़ी शक्ति हुई जो इतने जन्मों का पाठ और एक्यूरेट अपने अपने समय पर पूरा बजा सकती हूं। अगर हम इस बात को जरा अंदर महीनता से सोचते हैं तो पता चलता है कि सचमुच आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कैसे कैसे पाठ बजाती है और कितना यथारथ रीति से यथारथ समय पर बजाती आती है। तो मैं आत्मा जब इतनी शक्तिशाली हूं, तो क्या इस समय मैं अपना पार्ट एक्यूरेट नहीं बजा सकती? अपने आप से हमें बातें करनी है। अब ये जो बात आई है विजयी बनने के लिए का साधन बिंदु लगाना, वो बिंदु को हम दो रूप में ले, एक तो आत्मा के रूप में आ गया और दूसरा बिंदु जो बीता उसको फुल स्टॉप लगा। ड्रामा बीत गया, जो एक्टिंग बीत गई, उसका फिर से चिंतन, समझो कोई अच्छी नहीं हुई, उसमें कोई इधर उधर की बातें आ जाती है जो मेरे बुद्धि में बार बार याद आती रहती है और जिस कारण समझो मेरा चिंतन चलता है, उसको बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना, अर्थात मैं फिर से अपने यथारथ स्वरूप में स्थित हो, बाप की याद में स्थित हो जाए। तो जो भी नीची ऊंची बात हुई, यथारथ हुई या न यथारथ है, मेरे सामने क्लियर आ जाएंगी, मेरे बुद्धि में उसकी रिजल्ट क्लियर रहेंगी। जब क्लियर रिजल्ट आ जाती है तो फिर उस पर अधिक चिंतन नहीं चलता, फिनिश हो जाती, फुल स्टॉप आ जाता। ये बिंदी कहा जाएगा फुल स्टॉप को, जो बीता, अगर अच्छा न बीता, बीत गया ना, उसको फिर मुझे अच्छा कैसे बनाना है? अगर मेरी बुद्धि एकाग्र है तो मैं उसको यथारथ रीति से सोच सकता हूं कि इसको मुझे फिर से कैसे ठीक करना है। अगर मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, बार बार मैं सारी बीती हुई कहानी को फिर उसी रीति याद करके, इसमें ऐसे न होता तो ऐसे होता, ये न होता तो ये होता, देखो ये हो गया तो क्या हो गया, इससे तो अच्छा नहीं हुआ, इसी प्रकार से अगर मेरे अंदर हलचल चलती है तो इससे कोई न मुझे फायदा है, न मैं उसका कोई यथारथ निर्णय ले सकता हूं, जिस कारण और ही मेरे अंदर द्वंद चलता ही रहेगा, जिसमें अंदर जैसे कि मूंझा हुआ इंसान होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, समझने चाहता हूं पर समझ में नहीं आती है। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आती है, उसके लिए बाबा कहते हैं कि अच्छा बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप, उसके लिए फिर से कोई चिंतन न करो। जब फुल स्टॉप लगा देते हैं, एकदम बुद्धि शांत, जो बीता वो फिनिश, उसको फिर से ऐसा हुआ, ऐसा न होता तो ऐसा होता, देखो ऐसा हुआ इसलिए ये हो गया, ये जो हमारा द्वंद चलता है उसमें और भी बात, और भी हमारे बुद्धि में ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो मुझे और भी उलझन में डाल देंगे। और जब मैं उसको फुल स्टॉप कर लेता हूं फिर स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और बाप से सर्वशक्तिवान बाप अब और कोई बात को याद न करके बीता सो बीता, जो हुआ जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसी शुभ भावनाएं और बाप के प्रति वो विश्वास। जब विश्वास और शुभ भावना अंदर में जागृत हो जाती है तो बुद्धि दिव्य बन जाती है और दिव्य बुद्धि फिर यथारत निर्णय कर पाती है कि इसके बजाय अथवा इस बात को हम इस प्रकार से समझ के करेंगे तो इसकी रिजल्ट अच्छी रहेंगी। परंतु ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये द्वंद नहीं रहेगा। इसको कहा जाता है कि बीती को बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने से हमें स्वयं का बिंदी स्वरूप याद रहेगा और जब हम स्वयं अपने बिंदी स्वरूप में है तो लाइट और माइट का स्वरूप जो मैं हूं अति सूक्ष्म परंतु अति पावरफुल हूं, क्योंकि दिव्य बुद्धि है, उसके अंदर बीता हुआ कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं है, अभी मैं जो हूं जैसी हूं अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाती हूं। परंतु इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। हम समझे चलो अभी जैसे हमने कहा और हम स्थिर हो गए, हो सकते हैं ऐसे, परंतु तब जब इसका पहले से हमारा इतना अभ्यास हो। शुरू में हम लोगों ने जो अभ्यास किया तो हमारा चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि और कोई चिंतन तो हमें था ही नहीं, तो अंदर में ये जैसे कि अपने स्वरूप का शुद्ध चिंतन चलता रहता था, जो शुद्ध चिंतन हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति जागृत करता रहता था और हमारे भावों में अर्थात विचारों में वह रूहानियत आत्मक भावनाएं जिसको भी देखेंगे उनके प्रति भी वो आत्मक भावना, ये भी आत्मा है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो और जो भी कुछ बात हुई फिनिश, उस बात को याद नहीं करेंगे। अब हमें अपनी वास्तविकता को स्वयं में याद रख करके और सामने वाले को भी उस वास्तविकता से देखेंगे, क्योंकि शुरू में अगर हम ये अभ्यास पक्का करते हैं, जैसे समझो जब बीज डाला जाता है, जब बीज पहले धरती में डालते हैं तो कितना उसको हिफाजत से और कितना जो भी उसको चीजें चाहिए वो पूर्ण रूप से उसको देखकर अच्छी रीति से उसको पैक करते हैं और फिर उसको जो जो चाहिए वो उसी रीति से देते जाते हैं। अगर शुरू में उसकी पूरी संभाल करते हैं तो उससे फिर झाड़ ऐसा ही पैदा होता जाता है जो जब थोड़ा भी झाड़ बढ़ने के बाद इतनी परहेज नहीं रखनी पड़ती जो हमें शुरू में रखनी थी। तो ये भी हमारा जो शुरू का फाउंडेशन है अर्थात मुझ मैं आत्मा जो अनादि अविनाशी हूँ, अनादि अविनाशी स्वरूप जो हमारा, जिसको हम भूल चुके हैं, जिस कारण हमारे अंदर वो अविनाशी शक्ति जागृत नहीं हुई है जिस शक्ति के आधार से हम हर बात को सहज समझ सके और अपने को उस प्रकार से चला सके। इसलिए हमें इस अपने अविनाशी स्वरूप को पहले अच्छी रीत से समझ करके स्वयं स्वयं में समाना है, और उस समाने के लिए हर प्रकार की शुद्धता, मन की भी शुद्धता, दृष्टि की भी शुद्धता, व्यवहार की भी शुद्धता, बोल की भी शुद्धता, हर रीत से हर कर्म इंद्रिय का व्यवहार शुद्ध प्रकार से चलता रहे, तो ये जो आत्म अभिमानीपन की स्थिति है वो मेरी सहज बनी रहेंगी, जो हर समय अंदर से याद रहेंगी, और उस याद के आधार से जो मेरे गुण है, आत्मा के गुण, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ये जो हमारे पहले गुण है वो हमारे इमर्ज होते जाएंगे, जिसको हम रूहानी शक्ति कहते हैं। उस रूहानियत के अंदर ये सब समाई हुई है। रूहानियत किसको कहा जाता है, आप लोग ये अनुभव करके देखेंगे, जब आपकी बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति होगी, दृष्टि में आपके वो जिसको भी देखेंगे तो वो नैन रूहानी स्नेह संपन्न होंगे, स्नेह उसमें जरूर भरा हुआ होगा, क्योंकि केवल हम कहते नहीं है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, परंतु है भी प्रैक्टिकल में आत्मा एक बाप की संतान है, जो साथ रहते थे, साथ ही सब कुछ करते थे, तो वो जो हमारा नेचुरल स्वरूप है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वे गुण के रूप में इमर्ज होते हैं, जिस कारण वे नैन बड़े मधुर रहते हैं, स्नेहमयी रहते हैं, और वो स्नेहमयी नैनों से वो झलक नजर आती है, जो एक दो को आकर्षण करती है, आकर्षण माना जो प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, और उसके अंदर आत्मक और परमात्म स्नेह समाया हुआ होता है। लेकिन ये बातें शब्दों में बहुत कहने में नहीं आती हैं, ये जितना हम अंदर से इसको महसूस करते हैं, वो महसूसता हमारी वृत्ति और दृष्टि से अनुभव कराती है, जो अनुभव हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता जाता है। कर्म में हमारा बोल, हमारा देखना, हमारा हर प्रकार से संपर्क में आना, ये जो कर्म कर्म इंद्रियों से होता है, उन कर्मों में भी स्वच्छता और दिव्यता भरी हुई रहती है। जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो वो स्नेह भरा हुआ रहता है, जिसको हम रूहानी स्नेह कहते हैं। ये एक अंदर महसूस करने की बात होती है, जो जितना हम अंदर इस बात का चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमें यह सारी शक्ति को अनुभव कराता है, और वो अनुभव हमारे अंदर वे क्वालिटीज जागृत करते जाते हैं, जिन क्वालिटीज से हम व्यवहार में अथवा कर्म में आते हैं, जिन कर्मों से हमारे एक तरफ संस्कार बनता है, दूसरे तरफ संबंधों में ईश्वरी स्नेह भरा रहता है। इस फाउंडेशन को अगर हम शुरू से ध्यान पे रखते हुए अटेंशन देते हैं, तो ये अटेंशन हमारी आगे की धारणाओं को बड़ी मदद करता है, क्योंकि फिर जो जो बात हम सुनते जाएंगे उन बातों को हम अंदर इन्हीं भावनाओं से सोचेंगे। तो जैसी भावनाओं से सोचेंगे अर्थात उस पर जो हम मनन करेंगे, मनन करने के साथ साथ फिर उस पर हमारा मथन, मथन माना उसकी थोड़ी गहराई को अंदर हम समझने की कोशिश करें। जितना हम गहराई को समझते जाएंगे वो हमारी बुद्धि दिव्य होने के कारण उसको सहज धारण कर सकेंगी, और वो धारणा अर्थात बुद्धि दिव्य होने के कारण जो भी हमारा सोचूंगा, जो भी हम विचार करेंगे, जिस भी प्रकार का हम चिंतन करेंगे, उससे हमारे अंदर वह शुद्धता और रूहानी स्नेह और भी बढ़ता जाएगा, चाहे संबंध में चाहे हर कर्म, और फिर हमारे कर्मों में दिव्यता अर्थात शुद्धता। कर्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं जो पाप के खाते में जाए, कोई ऐसा कर्म नहीं जो द्वैत भावना जागृत करे, कोई ऐसा कर्म नहीं जिससे हमारे संबंधों में ऐसी बात पैदा हो जो एक भी नसंद की हो।